भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक पांच। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। आप भी बोलिए, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। ना नहीं ही निश्चय ही कश्चित् कोई क्षण क्षण मात्र अपि भी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है अकर्मकृत बिना कुछ किए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म कर्म सर्व समस्त प्रकृति जयी प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणई गुणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। नहीं कश्चित् क्षणम् अपि, कश्चित् का मतलब कोई, क्षणम् कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर के लिए भी एक क्षण के लिए भी कार्य किए बिना नहीं रह सकता है। नहि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। अकर्मकृत् का मतलब है कार्य किए बिना। कश्चित् क्षणम् अपि क्षण भर के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। और कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। हर व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। कैसे? विवश होकर प्रकृति जयी प्रकृति से उत्पन्न गुणैः, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है प्रकृति का गुण है। प्रकृति का गुण क्या है? तीन प्रकृति का तीन गुण है। वो तीन गुण क्या है? सत्वगुण रजगुण और तमो गुण। इस गुणों के द्वारा प्रभावित होकर हम विवश होकर हमें कार्य करना पड़ता है। हम करना नहीं चाहता है, फिर भी हमें करना पड़ता है। कार्य विवश होकर भी हमें करना पड़ता है। ऐसे तो हम हमारे इच्छा के अनुसार कोई कार्य करते हैं और हमारे इच्छा किए बिना भी, विवश होकर भी हमें कार्य करना होता है। ऐसे बहुत कार्य हैं हम जो करते हैं, हम नहीं करना चाहते परंतु हम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित होकर हम प्रकृति के वश में अपने इच्छा के बिना भी हम ये कार्य करते हैं, जिसके बारे में भगवद गीता में ही बताया गया है, प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति में, इस भौतिक जगत में सब कुछ हो रहा है गुणैः गुण के द्वारा और हमारे कर्म के अनुसार। प्रकृति क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सब कुछ होता है गुण और कर्म के अनुसार। परंतु अहंकार विमूढात्मा, अहंकार के द्वारा मोहित होकर हम सोचते हैं कि ये काम सब हम कर रहे हैं, असल में हम नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है असल में प्रकृति के गुण और हमारे कर्म के अनुसार हो रहा है। जैसे एक साधारण विचार ऐसे हो सकता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको बहुत संपदा हो, बहुत धन दौलत हो, हर व्यक्ति चाहते हैं और हर व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए कोशिश भी करते हैं, परंतु इतना कोशिश करने से भी धन प्राप्ति नहीं होता है। और इसके और एक विचार ये हो सकता है, देखते हैं कोई व्यक्ति कुछ नहीं किया है, एक धनी का पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ, जन्म से अनुसार से जन्म के कारण ही वो करोड़पति बन गया है, होता है ना ऐसा? तो क्यों एक व्यक्ति इतना कठिन प्रयास करने से भी उसको कुछ नहीं मिलता है और किसी को कुछ किए बिना ही उसको सब कुछ मिल जाता है, क्यों ऐसा होता है? इसका कारण क्या है? सब कुछ क्या ऐसे अचानक हो गए हैं, अकस्मात ऐसे एक्सीडेंटली हो गए हैं? नहीं, इसका पीछे कोई कारण है। वो कारण क्या है? वो कारण है गुणा कर्म, प्रकृति के गुण और हमारा कर्म। हम जो कार्य करते हैं उस कार्य का अनुष्ठान गुणों में होता है, या तो सत्वगुण में होता है या रजोगुण में होता है, नहीं तो तमोगुण में होता है, और उस कार्य के अनुसार हमें उसका फल मिलता है, जिसे कर्म का फल बोला जाता है, कर्म फल। कर्म का फल, हम जैसे कार्य करते हैं उसके अनुसार हमें उसका फल मिलता है, कार्य का फल मिलता है। जैसे कि हम जब सत्वगुण में काम करते हैं तो उसका फल कैसा होता है? सत्वगुण का फल सुखदायक होता है। रजोगुण से सुख और दुख दोनों ही मिलता है और तमोगुण का कार्य से केवल दुख ही मिलता है। रजोगुण से कैसे सुख दुख दोनों ही मिलता है? एक आदमी रजोगुण के द्वारा प्रभावित होकर बहुत कुछ करने का कोशिश करता है, वो बहुत सारे उद्योग बनाता है, वो सोचता है कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए, परंतु जब वो उद्योग जब वो बनाता है तो देखता है कि उस उद्योग के पीछे इतना परिश्रम होता है और इसके पास इतने उसके साथ साथ इतना झंझट भी आता है, ये टैक्स देना है, ये सरकार को ये कानून के अनुसार कार्य नहीं किया गया तो तकलीफ होता है। जैसे रशिया में जो रशिया तो पहले कम्युनिस्ट था, साम्यवाद था वहां, तो बाद में वहां का परिवर्तन हुआ, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, वो रशिया का जो सरकार का जो नीति था वो बिल्कुल बदल गया। वो रशिया साम्यवाद छोड़कर वैसे कैपिटलिस्ट बन गए, डेमोक्रेसी आया, प्रजातंत्रवाद आया, परंतु असल में वो धनतंत्रवाद बन गया और बहुत सारे आदमी बहुत रुपए कमाए उस समय। तो वहां जो एक आदमी जो बहुत उसको इतना रुपया बनाया, वो हम करोड़ों का हिसाब में भी उसको ये नहीं कर पाते, परंतु सरकार के साथ उसका कुछ झंझट हुआ और सरकार उसको कैद कर दिया, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया, एक दो करोड़ नहीं, लाखों करोड़ों रुपया जो बनाया था 5-7 साल के अंदर, वो आज कायद में ये हो रहा है। तो देखिए, ये रजोगुण का प्रभाव ऐसा होता है। रजोगुण का और एक दृष्टांत ऐसा होता है कि एक व्यक्ति राजा बनने चाहा, तो अंत में राजा ने बोला ठीक है, तुम राजा बनना चाहते हो, तुम राजा बन जाओ एक दिन के लिए, तो एक दिन का बादशाह बन गया। तो जब राजा का सिंहासन में जब बैठा तो देखा कि उसका सर के ऊपर एक खड़ग, एक बहुत सा बड़ा खड़ग वो झूल रहा है, और वो जो एक बहुत सा पतला सूता से उसको बांधा होता है। तो जब देखा कि वो अगर उसका मन में भय आ गया कि ये अगर टूट गए वो सूता, तो ये तो खड़ग तो मेरे गर्दन पर गिरेगा और मेरा मृत्यु हो जाएगा। तो बोला मैं नहीं सिंहासन में बैठना चाहता। तो राजा बताया, देखो तुम तो बाहर से केवल देखते हो कि राजा का ये सिंहासन में कैसा है, परंतु तो असल में हमारा सर के ऊपर ये झूल रहा है और किसी समय भी ये गिर सकता है, क्योंकि ये कार्य जो है ये बहुत ही खतरनाक है, इसका जो दाय ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो बड़े पोजीशन हमको जो मिलता है उसके साथ साथ बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो ये है रजोगुण की प्रभाव। राजा बनना चाहता है परंतु राजा बनने के बाद देखता है राजा बनने में कितना तकलीफ है, राजा होना कितना कठिन कार्य है। असल में अगर राजा हो तो सही राजा जो अपने प्रजा को कल्याण चाहता है, वैसे राजा हुई वैसे उसका ऐसा विचार होता है, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको संभालना बहुत कठिन काम है। और तमोगुण के प्रभाव से हमें कष्ट प्राप्ति होता है। वैसे आहार भी रजोगुण से होता है, तमोगुण से, सत्वगुण से होता है, रजोगुण से होता है, तमोगुण से होता है। सात्विक आहार जो है वो खाने से शरीर में बल आता है, तंदुरुस्त रहता है शरीर, वो सुखदायक होता है। रजोगुण का जो खाना, वो खाने में बहुत उसको स्वादिष्ट होता है, परंतु खाने के बाद उसको गड़बड़ होता है। और तमोगुण का जो खाना है वो खाने में भी सड़ा हुआ है खाने के समय, वो और खाने के बाद भी उसका फल भी ऐसे खराब होता है, जैसे नशा तमोगुण में होता है। जब नशा करता है तो अपना दिमाग खो बैठता है और उसके बाद उसका शरीर का भी कष्ट होता है। तो ऐसे तीन गुणों के प्रभाव से हमारा कार्य होता है और उसका फल भी गुणों की अनुसार होता है। उद्धम गच्छन्ति सत्तस्था मध्य तिष्ठति राजस, जघन्य गुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। उद्धम गच्छन्ति सत्तस्था, जो सात्विक है, जो सत्वगुण में काम करता है, वो कहां जाते हैं? ऊपर जाते हैं। ऊपर में क्या कौन सी जगह है आपको मालूम है ना? ब्रह्मांड के 14 भुवन है, उनमें से 7 है ऊपर का और 7 है नीचे का, और हम कहाँ हैं? हम बीच में हैं। हमारे ये हम जहां हैं, ये इस जगह का नाम क्या है? ये है भूलोक। इस भूलोक के ऊपर है भूवरलोक, उसके ऊपर है स्वर्गलोक या स्वर्गलोक, स्वर्गलोक को भी परे हैं महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और नीचे का 7 है ताल, अतल, सुतल, महातल, राशातल, तलातल और पाताल। ये सप्त पाताल है। तो और हम हैं बीच में। ये भौतिक जगत जो है ये बीच में है, मतलब यहां 3 गुणों का ही प्रभाव है। इस जगत में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुण का ही प्रकाश है। यहां हम 3 गुण के अनुसार कार्य कर सकते हैं, और जब हम सत्वगुण में कार्य करते हैं तो हम ऊपर जाते हैं, मतलब महरलोक, ये स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में आप तो जानते हैं स्वर्गलोक कौन से स्थान है, एक बहुत सुंदर जगह है, जहां स्वर्गलोक में ये केवल सुख ही सुख है, स्वर्गलोक में दुख नहीं है। और स्वर्गलोक में मृत्यु नहीं है, इसलिए उसके उस स्थान को अमर लोक कहा जाता है। और देवताओं जहां जो वहां रहते हैं उनको अमर कहा जाता है, क्योंकि उनका मृत्यु नहीं होता। और स्वर्गलोक में बहुत सारे बहुत सुंदर स्थान हैं, वहां सुख प्राप्ति के बहुत सारे व्यवस्था है। और स्वर्गलोक का परे और भी ऊपर जगह है महरलोक, जहां ऋषियों ने रहती है। स्वर्गलोक में भोग है, भौतिक भोग का आयोजन है, परंतु उसके ऊपर जो स्थान है महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, वहां भौतिक सुख के कोई प्रयास उनमें नहीं है, उन्होंने भौतिक सुख के प्रयत्न नहीं करते, उन्होंने भगवान के ही पूजन आराधन यज्ञ करते हैं। और जब वहां यज्ञ करते हैं, यज्ञ से भगवान खुद आ जाते हैं, प्रकाशमान वहां विराजमान होते हैं, यज्ञ से यज्ञाग्नि से भगवान आ जाते हैं और आकर पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, और उनकी जो जो कुछ वासना है उनको भगवान पूरा करते हैं। और उन्होंने क्या चाहते हैं, उन्होंने केवल भगवान का ही सेवा चाहते हैं। ऐसा ही स्थिति है ऊपर की लोग स्थानों में, जहां जो स्थान सत्वगुण के द्वारा प्रभावित है, और तमोगुण के द्वारा प्रभाव से वो अंधकारमय लोक में रहते हैं। पाताल लोक जो है वहां सूरज का रोशनी नहीं प्रवेश करता है, वहां का किरण वहां का ज्योति केवल सांप का मणि से होता है। मणि का रोशनी जैसे हम देखते हैं रात को जब सूरज चला जाता है तो क्या होता है, ये लाइट जलता है। और ये लाइट कैसे जलता है, कॉयल्स हैं, है ना, तार, वो तार भी सांप की भांति है ना, और सांप ये जो बल्ब जो है ये सांप का मणि जैसा है। तो नीचे का जो स्थान है पाताल लोक जो है वहां वैसा व्यवस्था है, नाग है जो बहुत फना है उनमें, और विशाल एक एक नाग है उनका मस्तक पर जो मोनी है मणि है, उस मणि का रोशनी से वहां का अंधेरा दूर होता है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि हम जैसे कार्य करेंगे उसके अनुसार विवश होकर हमें कार्य का फल मिलेगा, है ना। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो बहुत उसको बहुत सुख हो, उसको बहुत संपदा हो, परंतु अगर वो सही काम नहीं किया तो उसको क्या सुख मिलेगा, नहीं, उसको कष्ट मिलेगा। हम दुख नहीं चाहते हैं परंतु दुख हमें मिलता है। क्यों मिलता है दुख, हमें क्यों मिलता है, क्योंकि हम ऐसे कार्य किया है कि उसके कारण उसका फल के रूप में दुख मिल रहा है। तो ये विचार हमें करना चाहिए। देखिए भगवद गीता में भगवान जो कुछ कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी फॉल्सिटी का हिंदी क्या है, मिथ्या, झूठ, झूठ या ये को एक भी शब्द इसमें झूठ नहीं है, ये वास्तव सत्य है। इसको अगर हम ग्रहण कर लेंगे सरल रूप से तो हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा सारे कठिनाई सारे तकलीफ सारे कष्ट दूर हो जाएगा। परंतु हमें विश्वास के साथ इसको ग्रहण करना चाहिए। आजकल ऐसा होता है कोई अधिक से अधिक आदमी विश्वास नहीं करता, और मुश्किल ये होता है कि वो बोल लेते हैं कि भगवान नहीं है, परंतु हमारा प्रश्न ये है कि भगवान है या नहीं, है, इसके बारे में क्या आप कभी सोचे हैं? कभी उस जानने का है या नहीं, इस विचार करने का कोई प्रयत्न किए? इस बारे में शास्त्र में एक सुंदर कहना है कि जैसे आउल को क्या बोलते हैं हिंदी में, पेचक पे उल्लू, उल्लू उल्लू बोलते हैं ना? अच्छा, उल्लू और दिन को वक्त वो कुछ नहीं देखता है, तो उल्लू को मालूम चले पड़ेगा क्या सूरज है या नहीं, उसको आंख में उसको देखने का शक्ति, सूरज को देखने का शक्ति नहीं है और सूरज का देखने का कोई संभावना नहीं है। तो वैसे जो व्यक्ति को असल ज्ञान प्राप्ति का संभावना जिसको नहीं है, जैसे और ये भी बता जा सकता है कि अगर कोई अंधा है या अपना आंखों बंद करके रखा है और बोलता है सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, सूरज नहीं है, ये क्या सही कार्य हुआ? हमें आंखें खोलकर कोशिश करके देखना पड़ेगा कि सूरज है या नहीं। ऐसे तीन प्रकार के आदमी होता है, जो दिन को जो रोशनी जो है वो देख नहीं सकता है, एक है जो अंधा है जो दिन और रात दोनों का ही देख नहीं सकता है, और एक है जो अपना आंखें हैं परंतु वो आंखें खोल नहीं रहा। और असल बात यह है कि हम विश्वास करें या नहीं, उससे भगवान का कुछ आता जाता नहीं। जैसे कोई अंधा अगर बोलेगा कि सूरज नहीं है, उससे क्या सूरज का कोई कुछ नुकसान होता है? ना तो जिसकी आंखें हैं उनका कुछ नुकसान होता है। जो बुद्धिमान है उनको विचार करना चाहिए भगवान है या नहीं, और अगर है तो भगवान कौन है। ऐसे बहुत आदमी मानते हैं भगवान है, परंतु भगवान कौन है उसका कोई विचार नहीं है। बोलते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, परंतु भगवान कौन है? वो उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है। परंतु अगर भगवान के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, और भगवान खुद आकर यहां बता रहे हैं कि वो कौन है, तो उस प्रकार से भगवान को जानना ही क्या बुद्धिमान का विचार नहीं होता? देखिए भगवत गीता क्या है, भगवत गीता का मतलब क्या है? भगवान का वाणी, भगवान कह रहे हैं वो कौन है, भगवान बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं हम कौन हैं, और भगवान बता रहे हैं कि उनके साथ हमारा संपर्क क्या है, कैसा है, कैसे हम उनके साथ हमारा संपर्क जोड़ सकते हैं। ये सब भगवान भगवत गीता में बताए हैं। इसके कारण भगवत गीता को पाठ करना इतना जरूरी है, और उसके ही कारण हम आपको बोलते हैं कि आप लोग आइए, भगवान के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। हर शाम को यह पाठ होता है, और अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न का भी जवाब हम देने का कोशिश करते हैं। जैसे कल ये हुआ, मैं आने को बोला 6:30 बजे, नहीं आया। बोलते हैं भगवान मैं नहीं मानता, मैं बोला ठीक है आप मानते नहीं है, परंतु मेरा प्रश्न है कि मान आप भगवान है या नहीं ये जानने का क्या कोशिश किए थे, किए हैं कभी? कोशिश नहीं किया और कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, बाद में बोलते हैं भगवान एक शक्ति है। तो मैं पूछा शक्ति, और शक्ति कहां से आया? कोई शक्ति का तो श्रोत्र होना चाहिए। हाँ ठीक है शक्ति है, परंतु शक्ति के पीछे तो एक शक्तिमान होना चाहिए। हाँ शक्तिमान को बिना तो शक्ति नहीं हो सकता है। तो शक्तिमान या शक्ति का श्रोत्र कौन है? ये तो सिर्फ बुद्धि के द्वारा विचार करने का विषय है। हम तो ऐसे बोलते हैं, देखिए मैं इस आध्यात्मिक मार्ग का सबसे श्रेष्ठ जो सिद्धांत है वो मैं प्राप्त होना चाहता हूं, आध्यात्मिक विषय में मैं जानने के लिए तैयार हूं। और जिस मार्ग मार्ग हम ग्रहण किया है उससे आगे बढ़कर और कोई मार्ग अगर है तो आप बताइए, मैं उसको ग्रहण करूंगा। और आपको पास अगर वैसा मार्ग नहीं है और जो मार्ग हम ग्रहण किए हैं वो आप जो मार्ग ग्रहण किए उससे अच्छा है तो इस मार्ग आपको भी ग्रहण करना चाहिए, अगर आप If you are sincere, sincere पे हिंदी क्या होता है? गंभीर। अच्छा ठीक है, आप अगर गंभीर हैं, आप अगर आपका कल्याण चाहते हैं तो श्रेष्ठ मार्ग ही आपको ग्रहण करना चाहिए, है ना? जब उसका संभावना जब है, वो जब मिल रहा है, मैं एक समय भारत में वापस आया था, विदेश में था मैं, और भारत में आया ये आध्यात्मिक मार्ग ग्रहण करने के लिए। जब भारत में आने का पहले मैं सोचा भारत में आने से ही गुरु मिल जाएगा और सब बहुत ही सरल रूप से ये मार्ग में हम आगे बढ़ सकेंगे, परंतु भारत में जब वापस आया मैं घर भी नहीं गया, मैं दिल्ली में लैंड किया था और दिल्ली से सीधा चला गया था हरिद्वार, उसके बाद ऋषिकेश के आगे भी। परंतु ऐसे किसी को नहीं मिला जिसको मैं अपना गुरु के रूप में ग्रहण कर सकता। तो मैंने बहुत अनुसंधान किया, बहुत ढूंढा और अंत में करीब एक साल ढूंढने के बाद मैं सोचा कि इतना ढूंढने के बाद भी मेरा श्री गुरुदेव को संधान नहीं मिला, हो सकता है कि मेरा गुरु नहीं है। और मेरा मन में कुछ अभिमान भी हुआ और मैं सोचा कि अगर मेरा गुरु है तो अब उनको ही आकर हमको लेना पड़ेगा। मैं तो ढूंढा उनको नहीं मिला, अगर गुरु सही गुरु है मेरा, जय श्री श्री राधा। ये सोचकर मैं घर वापस गया और ढूंढना बंद कर दिया और उसी समय हमको एक ग्रंथ मिला जो था रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु का अंग्रेजी अनुवाद, प्रभुपाद का अनुवाद था। तो ग्रंथ में जब पढ़ना शुरू किया, पहले पृष्ठा से ही, पहला पेज से ही तो ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता ही मैं ढूंढ रहा था। जो राह मैं ढूंढ रहा था यही है, क्योंकि एकदम फर्स्ट पेज से ही प्रभुपाद ने एकदम सही रूप से, एकदम सरल रूप से प्रभुपाद ने वहां विश्लेषण किया भगवान को। और हमारे साथ भगवान का संपर्क क्या है? प्रभुपाद जी ने बताया भगवान भगवान है, हर स्थिति में ही भगवान भगवान है और हम उनका अंश हैं। उनका अंश होने के कारण गुण के अनुसार हम उनके साथ एक हैं, परंतु हम क्षुद्र हैं, हम अंश हैं, भगवान पूर्ण है। और इतना अच्छा लगा कि मैं वो पढ़ते ही रहा और सुबह को भी उठने के बाद हम उस पढ़ते पढ़ते मैं सो गया और सुबह उठकर पहला मैं उस किताब लेकर फिर पढ़ना शुरू किया। और उस रात को हमको एक सपना मिला, मैं सपनों में देखा प्रभुपाद का दर्शन हुआ सपना में, और तभी पता चल गया कि यहाँ ये है, इन्हें मेरा श्री गुरुदेव है। तब प्रभुपाद अमेरिका में थे, हमें पता चला कि प्रभुपाद अमेरिका में था, तो मैं सोचा कि प्रभुपाद आने के बाद हम उनके पास अपने आप को समर्पण करूंगा। और ये भी मेरा सौभाग्य था कि प्रभुपाद जब वापस आए भारत में और उनके साथ जब मेरा मुलाकात हुआ, शुरू से ही प्रभुपाद अपने पास रख लिया। तब प्रभुपाद का करीब 10,000 शिष्य था और सब व्यक्ति प्रभुपाद के साथ रहना क्या, प्रभुपाद के दर्शन के लिए, दर्शन मिलना भी प्रभुपाद को बहुत ही मुश्किल था। परंतु मेरा ये परम सौभाग्य था कि इतना देरी में आने से भी प्रभुपाद के साथ रहने का एक महान सौभाग्य हमको मिला था। तो ये सदगुरु जो है, इनके उन्होंने जो मार्ग दिखाते हैं वो सही मार्ग होता है और उस मार्ग में रहने से हमारा असल कल्याण साधन होता है, हमारा जीवन सार्थक होता है। क्योंकि सदगुरु कौन है? सदगुरु है वो जो भगवान को जानते हैं। क्योंकि उन्होंने भगवान को जानते हैं, उसलिए उन्होंने दूसरों को भी समझाने सकता है कि भगवान कौन है। और मन में तब कोई शक नहीं रहा भगवान के बारे में। और उस राह में जब हम रहते हैं तो आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे बढ़ते रहते हैं, और जितना ही हम इस मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता है। और ये कल्याण का प्रकाश किस रूप में होता है? हमारा जो कष्ट है उसका निवृत्ति हो जाता है, उसको नाश हो जाता है, कष्ट की नाश हो जाता है और आनंद का प्राप्ति होता है। इससे ही हमें पता चलता है कौन मार्ग सही है और कौन मार्ग सही नहीं है। जो सद्गुरु हैं, जय कृष्ण तत्ववेत्ता श्री गुरुवाई, जो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, उन्होंने ही है सद्गुरु। और सद्गुरु क्या करते हैं, कृष्ण के साथ हमारा संपर्क जोड़ देते हैं। कैसे देते हैं कि संबंध ज्ञान, पहला ये है संबंध। भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संपर्क क्या है, ये विचार, ये संबंध ज्ञान जो है, ये तीन ये है विषय होता है आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक विषय का। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का मतलब होता है संपर्क। हिंदी में ये संबंध का व्यवहार होता है क्या, संबंध इस शब्द का व्यवहार होता है संबंध? अच्छा, ये तो संस्कृत से ही सब आता है, तो सारे संस्कृत शब्द का भी इसका प्रयोग होता है। परंतु दो ये होता है, एक तो है शुद्ध और एक होता है लौकिक। जैसे शुद्ध प्रयोग कम होता है, लौकिक प्रयोग अधिक होता है। तो संस्कृत का जो प्रयोग होता है वो असल शुद्ध प्रयोग है। संबंध, भगवान का साथ हमारा संपर्क। परंतु संपर्क कब स्थापन हो सकता है, संपर्क हम कब जोड़ सकते हैं, जब हमें पता चलता है कि वो कौन है। जैसे मेरा पिता के साथ जो मेरा संपर्क, हमको मालूम है कि वो मेरा पिता है, उसके कारण मेरा पिता के साथ संपर्क है। अगर पिता के साथ पिता कौन है और अगर पता नहीं रहता था तो उनके साथ संपर्क नहीं जोड़ सकते थे। तो वैसे ही भगवान के साथ संपर्क जोड़ने के लिए हमको सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है, समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है। और भगवान कौन है और मैं कौन हूं और मेरे साथ उनका संबंध या संपर्क कैसा है, ये है पहली चरण। और उसके बाद अभिधेय। हां, भगवान के साथ हमारा संपर्क है और कैसे हम वो संपर्क जोड़ सकते हैं, कैसे भगवान के साथ हम ये संपर्क जोड़ सकते हैं, और उसको कहा जाता है भक्ति या प्रेम। प्रेम है एक विशेष उपाय जिसके द्वारा यह संपर्क स्थापन होता है, है ना। जिसके साथ, जिसके प्रति हमारा प्रेम है उसके साथ मेरा हमारा संपर्क है, जिसके प्रति हमारा विद्वेष है उसके साथ संपर्क बनता नहीं, उससे हम दूर रहना चाहते हैं। तो ये भगवान के प्रति जो प्रेम, वो प्रेम का ही नाम है और यह भक्ति का प्रकाश होता है या प्रेम का प्रकाश होता है सेवा के द्वारा। जिसको हम प्यार करते हैं उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। देखिए, पिता अपना बच्चा को प्यार करते हैं और उसके कारण पिता ने क्या कुछ, कितना कुछ करते हैं, हा? अपना बच्चा के भलाई के लिए कितना बंदोबस्त, कितना आयोजन करते हैं, है ना। लड़का को पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल में भेजना, अच्छा यूनिवर्सिटी में भेजना, ये कठिनाई को स्वीकार करके अपना लड़का के लिए पिता कितना कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण है प्रेम। तो वैसे ये जो भगवान के प्रति जब हमारा जो प्रेम है उसको प्रकाश होता है ये सेवा के माध्यम। और तीसरी चरण है प्रयजन, भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ने से फायदा क्या होता है, जरूरत क्या है भगवान को साथ संपर्क जोड़ने का। ये सवाल तो स्वाभाविक रूप में ही आता है, क्यों हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ेंगे। तो ये है प्रयोजन। और प्रयोजन क्या है, प्रयोजन है आनंद, हम आनंद चाहते हैं। और वो आनंद कैसे हम प्राप्त हो सकते हैं, हर व्यक्ति आनंद चाहता है और आनंद प्राप्ति के लिए ही उन्होंने कितने सारे कार्य कर रहे हैं, कितने सारे तपस्याएं कर रहे हैं। तो वो आनंद प्राप्ति के उपाय है भगवान के साथ हमारा संपर्क जुड़ना। जब हम भगवान के साथ हमारे संपर्क जोड़ लेते हैं तब स्वाभाविक रूप से ही उस प्रेम के फल के स्वरूप में आनंद प्राप्ति होता है। तो ये है आध्यात्मिक मार्ग की तीन चरण, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और जब सही मार्ग हम ग्रहण कर लेते हैं तब, और जब ये तीन पूरा हो जाता है, भगवान के साथ हमारा संपर्क स्थापन हो जाता है, कैसे, प्यार के माध्यम, प्रेम के माध्यम भगवान के प्रति अभिधेय, और उससे जब हमें आनंद मिलता है तब हमारा जिंदगी और कुछ क्या बाकी रह जाता है हमारे जीवन में, तब हमारा जीवन सार्थक होता है। तो अब बताइए, इस जीवन, इस मार्ग ग्रहण करना चाहिए या नहीं, है ना, इसको ग्रहण करना चाहिए। और मैं तो बोलूंगा, जैसे मैं कह रहा था, प्रभुपाद जी से मुलाकात होने के पहले मेरा जीवन में बहुत उलझन हो रहा था, क्योंकि जिस राह में, जिस मार्ग में ग्रहण करना चाहता था वो नहीं मिल रहा था। मैं आध्यात्मिक मार्ग ग्रहण करना चाहता था परंतु गुरु नहीं मिल रहा है जो हमको राह दिखाएंगे। मैं जगह जगह में घूम रहा था, बहुत साधु संत के साथ मुलाकात हो रहा था, परंतु मुझे ऐसा मालूम हुआ कि ये मैं नहीं, ये मेरा राह नहीं है। और जब प्रभुपाद जी के साथ मुलाकात हुआ, और वो मुलाकात तो भी मैं बताया साक्षात नहीं हुआ था, एक ग्रंथ के माध्यम, परंतु ये ग्रंथ के माध्यम जो संपर्क बना और इस ग्रंथ के माध्यम जो शिक्षा प्रभुपाद जी से मिला, उससे ही हमें सही मार्ग का प्राप्ति हो चुका था। आज जो कुछ आपके सामने मैं कह रहा हूं वो भी श्रील प्रभुपाद का ही कृपा है। उनके साथ परिचय होने का पहले, उनके साथ, उनके शिक्षा प्राप्ति के पहले हमें भी कुछ भी पता नहीं था। मैं आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ रहा था, भगवद गीता मेरा साथ हर समय रहता था, और मैं भी पढ़ता था और सोचता था कि मैं भगवद गीता बहुत समझ रहा हूं। परंतु जब प्रभुपाद जी के साथ साक्षात हुआ, प्रभुपाद जी का शिक्षा जब मिला, तब मुझे पता चला कि भगवान भगवत गीता का एक भी शब्द मैं समझा नहीं। क्योंकि सही सच आपको बता रहा हूं, तब तक मुझे मालूम भगवद गीता पढ़ता था परंतु ये मालूम नहीं था कि कृष्ण भगवान है। जो भगवद गीता मैं पढ़ रहा था, जब तभी लिखा हुआ है भगवान उवाच, चूंकि मैं भगवान कौन है वो नहीं जानता था, उसलिए मैं उस शब्द का अर्थ नहीं समझा। पढ़ता था भगवान उवाच, परंतु भगवान कौन है वो हमें पता नहीं था। यद्यपि ये मालूम था कि कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता, अर्जुन को समझा रहे हैं, परंतु जब से प्रभुपाद जी के शिक्षा प्राप्त हुआ तब से एकदम सरल रूप से ही ये समझ में आ गया कि कृष्ण ही भगवान है। और भगवद गीता में कृष्ण जो कह रहे हैं उसके अनुसार ही उस भगवद गीता का शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अपना मन की कल्पना के द्वारा कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। उसके कारण देखिए प्रभुपाद जी का जो भगवद गीता है इसका नाम क्या है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यथारूप हाँ, प्रभुपाद जी ने इसका अंग्रेजी जो शब्द व्यवहार किए थे वो था एज इट इज। एज इट इज का अर्थ होता है जैसा कि तैसा, यथारूप। तो उसका मतलब क्या है, प्रभुपाद जी उसको विश्लेषण करते हुए बताए हैं कि यथारूप या एज इट इज का मतलब है श्री कृष्ण जैसे बताया और अर्जुन जैसे समझा। ये नहीं कृष्ण ऐसे बताया और मैं जैसे समझा। हमको भगवद गीता का उद्देश्य है कृष्ण ने बताया अर्जुन को और अर्जुन जैसे समझा। और देखिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो गूढ़ गोपन शिक्षा, ये जो विषय जो है राजविद्या राजगुह्यम, ये गुह्यम शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में, गुह्य गुह्य का मतलब गोपन। सारे गोपनीय तथ्य में से जो सबसे गोपनीय है वो है भगवद गीता का नवम अध्याय में भगवान विश्लेषण कर रहे हैं। और उसका शुरू इस अध्याय का शुरू शुरू में भगवान कह रहे हैं कि राजविद्या राजगुह्यम और पवित्रम ही एतद् उत्तमम्, ये परम पवित्र है ये ज्ञान। और भगवान बता रहे हैं क्यों मैं तुमको बता रहा हूं अर्जुन, भक्तों से मैं सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो तुम मेरे सखा हो उसके कारण ही मैं तुमको ये बता रहा हूं। तब देखिए जब तक ना हम भगवान को भक्त बनते हैं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये भक्ता माम अभिजानाति जावान जश्चाश्मि तत्त्वतः। भक्ति के द्वारा ही केवल भक्ता माम अभिजानाति पूर्ण रूप से हमें जान सकता है, मेरा जानकारी होता है पूर्ण रूप से कब, भक्ति के द्वारा। और भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति का शुरू कैसे होता है, भक्ति का शुरू कैसे होता है वो भगवान बताया भगवद गीता का अंत में। भगवद गीता का भगवद गीता में भगवान का अंतिम उपदेश क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, केवल मेरा ही शरण लो, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तब मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर पाऊंगा, सोचो मत मां शुचः। और ये जो शरणागति, ये भगवान को शरण ग्रहण करना, ये ही है भक्ति का शुरू, इससे ही भक्ति का शुरू होता है। जब हम अपने आप को भगवान के पास समर्पण करते हैं तो भगवान हमें अपना बना लेते हैं। अपना गोद में उठा देते हैं, तब भगवान के साथ हमारा संपर्क बन जाता है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।